हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 42। कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारुण बिम्बफलजरोष्ठा पुरीन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः विवेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा दिवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णम् भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 42। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, क्षमा सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितिम्। सतु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्। प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परमर्षिभिः। शब्दों का अर्थ, सतु संश्रावयामास, स मतलब व्यासदेव के पुत्र ने, तू पुनः, संश्रावयामास अर्थात सुनाया, महाराजं परीक्षितम्, राजा परीक्षित को, प्रायोपविष्टम गंगायाम, प्रायोपविष्टम मतलब अन्न जल रहित मृत्यु के लिए बैठा, गंगायाम गंगा नदी के तट पर, परीतम परमर्षि भी, परीतम मतलब घिरा हुआ, परमर्षि भी अर्थात बड़े बड़े ऋषियों द्वारा। अनुवाद, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में ऋषियों से गिरे निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर बैठे हुए महाराज परीक्षित को यह भागवत सुनाई। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सारे दिव्य संदेश शिष्य श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त होते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रामाणिक नहीं माना जाता। व्यास देव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, जिनसे सुत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सुत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से प्राप्त करना चाहिए। किसी प्रतिकूल व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण अनशन करते हुए वे गंगा के किनारे पर जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां आ गए। उन सबों ने उन्हें उनके कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें भागवत सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपद शंकराचार्य ने भी संस्तुति की है कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमय व्याकरण रिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती है। आसन्न मृत्यु के समय गोविंद नाम का जाप करना चाहिए, यही सभी आध्यात्मिक वादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए, यही समस्त आध्यात्मिक कर्मों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुनी और समर्थ सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें उसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों ही साथ साथ मुक्त हो गए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय, जिसका नाम है समस्त अवतारों के उत्सव भगवान श्री कृष्ण, उसमें हमने भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में पढ़ा और भगवान के परमात्मा रूप और निराकार ब्रह्म के विषय में पढ़ा और अंत में यह निर्णय दिया गया कि वास्तव में यदि कोई धन्य है तो वो कौन है जो कि भगवान की कथाओं का श्रवण करता है। और इससे क्या होता है, आत्मा आनंदित होती है और सबसे बड़ा नयत्र भूय परिवर्त उग्र, इस भयंकर उग्र संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता है। और यह भगवान की कथा यदि श्रवण करनी है तो उसके लिए एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर कोई कैतव नहीं है, वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। और श्रीमद् भागवतम महापुराण जो है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ उसके विषय में बताया। तथिदं ग्राहयामास सुतमात्वताम्बरम कि सुखदेव गोस्वामी जो कि वेद व्यास के सपुत्र थे, उन्होंने वेद व्यास ने अपने पुत्र को यह श्रीमद् भागवतम सुनाया। वो क्या है? सर्व वेद इतिहासानां सारं सारं समुद्धृत कि जितने भी वेद शास्त्र इतिहास और है जो कुछ भी है उस सब का सार निकाल के, उसका नवनीत, उसका माखन, उसकी क्रीम निकाल के वेद व्यासी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। और आज उसके बाद क्या हुआ उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। सतु संश्रावयामा स मतलब अब उसने, यानी कि जिन्होंने जिनको पहले सुनाया, किसको सुनाया? व्यासदेव ने अपने पुत्र को सुनाया, फिर उन्होंने यानी सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव के पुत्र थे, स उसके लिए कहा गया, व्यासदेव के पुत्र ने सतु संश्रावयामास यानी कि उन्होंने फिर किसको सुनाया? महाराजम परीक्षितम कि महाराज परीक्षित को उन्होंने सुनाया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने महाराजा परीक्षित को क्यों सुनाया? क्योंकि वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को सुनाया क्योंकि वो उनका कल्याण करना चाहते थे, वो पात्र थे इसलिए। तो आगे बताते हैं प्रायोपविष्टम उन्हें क्यों सुनाया? क्योंकि वो प्रायोपविष्टम का मतलब होता है अन्न जल त्याग कर दिया था और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहाँ पर? गंगायाम, गंगा नदी के तट पर वो बैठे हुए थे। उन्होंने सब कुछ, अन्न जल परिवार राज्य सब कुछ का परित्याग कर दिया था और गंगा नदी के तट पर आकर बैठ गए थे। क्या वो अकेले बैठे थे वहां पर? नहीं, वो बोलते हैं परितम गिरे हुए थे। कहाँ से? किसके साथ? किससे गिरे हुए थे? परमर्षि भी, बहुत सारे ऋषि मुनि उनके साथ थे और उनसे ऋषि मुनियों से घिरे हुए थे। और वहां पर परीक्षित महाराज को श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने यह श्रीमद् भागवतम महापुराण सुनाया। तो अब यहाँ पर ये सब डिटेल से तो आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसको संक्षिप्त में बताएंगे कि महाराज परीक्षित जो है उनको श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि जो कि सम्यक ऋषि के पुत्र थे। और सम्यक ऋषि से जब महाराजा परीक्षित वहां से आए, क्योंकि महाराजा परीक्षित बहुत ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत बहुत ख्याल रखते थे, वो हर जगह जाकर देखते थे, मतलब जितना दूर दूर तक जहां तक इनकी प्रजा थी महाराजा परीक्षित जो है वो बहुत, कितना उनका राज्य का पावर था कि जितना भी कुरुओं का और पांडवों का समस्त जितना भी राज्य था वो सारा का सारा महाराजा परीक्षित के पास था। और जितने मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड जितनी दुनिया है उसका पूरा राज्य जो था वो महाराजा परीक्षित के पास था। और महाराजा परीक्षित जो थे वो अलग अलग जगहों पे जाकर देखते थे कि मेरी जो प्रजा है वो आनंद से है, उनको कोई कष्ट तो नहीं है। तो इसी तरह से एक बार जब वो अपनी प्रजा का हाल देखने जा रहे थे तो बहुत उनको प्यास लगी, रास्ते में समीक ऋषि का आश्रम आया, वहां पर ऋषि जो थे वो ध्यान मग्न थे। और कलयुग के प्रभाव से महाराजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप जो था वो ऋषि के गले में डाल दिया, क्योंकि महाराजा परीक्षित ने बहुत बार ऋषि को कहा मुझे प्यास लगी है मुझे पानी दो, मगर उन्होंने नहीं दिया। तो महाराजा परीक्षित को ऐसा लगा कि ये ऋषि ढोंग कर रहा है और ऐसा करके वो चले गए। जब श्रृंगी ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने महाराजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि 7 दिन के बाद तक्षक सर्प जो है वो आपको डस कर मार देगा। जब ऋषि की समाधि टूटी तो फिर उसके पुत्र ने कहा कि पिताजी आपका अपमान करने वाले को मैंने अच्छा दंड दे दिया है, लेकिन जब समीक ऋषि को ये पता चला कि इसके पुत्र ने इतना घोर अनर्थ कर दिया, क्योंकि महाराजा परीक्षित बहुत ही अच्छे राजा थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे महाराजा परीक्षित को ये बताना चाहिए कि अब उनकी 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। तो ये सोचकर समीक ऋषि गए महाराजा परीक्षित के पास और उन्हें बताया कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, क्योंकि मेरे बेटे ने आपको श्राप दे दिया है, अब आप उसका उपाय कीजिए। तो अब इसको हम डिटेल से आगे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कि उनको क्यों सुनाया, तो उसको हमें थोड़ा सा समझना है। वास्तव में महाराजा परीक्षित जो थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक छत्र राजा थे। यदि वो उस समय चाहते तो समस्त नागों को समाप्त कर देते। उनके पास इतना पावर था कि वो ऋषि के इस श्राप को समाप्त करने कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस श्राप को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि कृष्ण की इच्छा समझकर। भले ही महाराजा परीक्षित उस समय अभी यंग थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास पावर था, परंतु अब उनको ऐसा लगा कि वाकई में मैंने बहुत समय राज्य कर लिया है, आप मुझे अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना चाहिए। मृत्यु तो एक समय सबको आनी है, परंतु बुद्धिमान वही है जो मृत्यु के लिए पहले से ही तैयारी करता है। जिस प्रकार परीक्षित को 7 दिन के बाद मरना था, उसी तरह संसार के समस्त प्राणियों की मृत्यु भी इन्हीं 7 दिन के बाद ही होगी। जैसे कोई ना कोई 7वां दिन के बाद, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो 7 दिन का मतलब होता है कि इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारी मृत्यु का है। तो हमें भी उस मृत्यु का स्वागत करने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। यानी जितना भगवान ने हमें दिया है, जो भी फैसिलिटीज दी हैं और जो भी पावर दिए हैं, उन्हीं के अनुसार हमें भगवान की सेवा के लिए हर वक्त तत्पर रहना चाहिए। यदि हम महल में रहते हैं, अर्थात हमारा बहुत सुंदर घर है, सुंदर संतान है, सुंदर सारा वातावरण अच्छा है, तो उसमें रहकर हम किस तरह से भगवान की सेवा करें? अगर हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, तो एक वृक्ष के नीचे जहाँ पर भी है, हम हैं, उसी स्थान में, उसी जैसा भी सर्कमटेंसेस है, नाउ एज इट इज, जैसी भी जो कुछ भी है, यानी कि जो कुछ हमारे पास फैसिलिटी है, उन्हीं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। और जो कुछ भी है, यानी और उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार, कुछ भक्त क्या करते हैं, जैसे उनको ऐसा लगता है कि ये जो सर्कमटेंसेस है ना, उसमें मैं भक्ति नहीं कर सकता, उससे मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, उस स्थान को छोड़कर मैं क्या करूंगा, या तो फिर मैं जंगल में चला जाऊंगा या वृंदावन में चला जाऊंगा और वहां पर सेवा करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। अर्जुन ने भी ऐसे ही कहा भगवान को कि भगवान मैं चाहता हूँ कि युद्ध नहीं करूं और जंगल में चला जाऊं, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, जो तुम्हारे नियत कर्म है उनको पालन करते हुए तुम श्रेयान स्वधर्म विग्रह परधर्मो भयावह। भगवान ने कहा अगर तुम्हारे नियत कर्मों को करते हुए तुम जो तुम्हारे, जैसे अगर हम गृहस्थ हैं, जो भी हमारे वरन और आश्रम होता है उसके अनुसार हमारे पास कुछ ड्यूटीज होती हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनको पूरा करते हुए हमें किस तरह से भगवान की सेवा करनी है, वास्तव में हमें शास्त्र वही सिखा रहा है। तो अर्जुन को भगवान ने मना कर दिया कि तुम्हें अपने नियत कर्म पूरे करने हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो परीक्षित महाराज जो कि एक छत्र राजा थे, वो अपना समस्त राज, उनका इतना बड़ा राज्य था, उनकी संतानें भी थी, उनकी पत्नी भी थी, उन समस्त को छोड़कर वो आ गए थे गंगा के किनारे, और सारे जितने ऋषि मुनि थे वो उनसे, मतलब गिरे हुए थे। अब यहाँ पर एक और भी ना बात क्लियर हो रही है कि उस समय जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसको आप अपनी बुद्धि से सॉल्व नहीं कर सकते। जो भक्त होते हैं, जो हमेशा परंपरागत जो गुरु महाराज होते, जैसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर हमें कि सारे संदेश जो है वो शिष्य श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो शिष्य परंपरा होती है ना, गुरु शिष्य परंपरा, हमारे गुरु महाराज के आदेशानुसार हमें कार्य करने चाहिए। और जब तक शास्त्र को हम गुरु परंपरा से आए हुए श्रृंखला के जरिए ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उसको प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। यानी कि अपनी व्याख्या अगर कोई दे रहा है शास्त्र की, शास्त्र में अपनी व्याख्या, तो ये कभी भी वो ग्राह्य नहीं है। मतलब जो परंपरा से आया हुआ गुरु होगा वो आपको एज इट इज जब तक नहीं बताता है तब तक वो प्रमाणिक व्याख्या नहीं है। अब व्यास देव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सुनाया और शुकदेव गोस्वामी ने जूं का तू उसको उठा के परीक्षित महाराज को सुनाया। जब तक कोई ऐसा एज इट इज हमको नहीं बताता शास्त्र को, तब तक हम शास्त्र का पूरा लाभ, उसी तरह से आज हम श्री रूपा जी के वचनों को यदि एज इट इज समझने का प्रयास नहीं करते हैं तब तक हम उसको सही तरह से कभी भी उसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपको श्रीमद् भागवतम का ये संदेश सूत्र गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से प्राप्त करना चाहिए, किसी प्रतिकूल व्याख्याकार से। यानी कि प्रतिकूल का क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो देश काल के अनुसार इसकी व्याख्या को तोड़ मोड़ के उसके अंदर, यानी कि अपनी उसको ये ना बात डाल के उसको बता दे कि भाई नहीं इस तरह नहीं इस तरह, जैसे वो उसको एज इट इज नहीं बताता। शास्त्र को हमें एज इट इज बताना है, जैसा शास्त्र में लिखा हुआ है। हम शास्त्र की बात को चेंज नहीं कर सकते, परंतु आज कुछ वक्ता ये सोचते हैं कि यदि हम इस शास्त्र को एज इट इज देंगे तो फिर है ना ज्यादा लोग सुनना नहीं चाहेंगे, वो उनको है ना ग्लैमर चाहिए, उनको मजा चाहिए, उनको है ना संगीत चाहिए, ये चाहिए। लेकिन भगवान ने कब कहा कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अनुयायी बनाने, या श्री प्रभुपाद ने या चैतन्य महाप्रभु ने कब कहा? चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि न धनम न जनम न सौंदर्यम कविताम वाम जगदीश काम, मुझे सुंदर स्त्री की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरी वाह वाह करने वाले अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं यदि एक व्यक्ति भी मेरे इस प्रचार से शुद्ध वैष्णव बन जाता है तो समझो कि मैं सक्सेस हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम मान अपमान दुख सुख हार जीत लाभ हानि के विषय में मत सोचो, तुम्हें केवल वही करना है जो मैं कह रहा हूं। मतलब हमें पूरी प्योरिटी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ प्योर और एज इट इज शास्त्र को वर्णन करना है। हम क्या सोचते हैं, कुछ लोग है ना भक्ति में आने के बाद जब भक्ति में आते हैं तो सोचते हैं कि बस अभी हम भक्ति करना शुरू हो गए हैं तो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो फिर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। परंतु भगवान की आज्ञा का पालन करके भौतिक परफेक्शन मिल सकती है, ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर है ना जिस अगर देखते हैं अभी कभी अगर मतलब कोई भक्ति में आगे बढ़ता है और फिर उसको परफेक्शन नहीं मिलती है तो फिर भगवान के प्रति उसका जो विश्वास है वो ढीला पड़ जाता है कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, भगवान की आज्ञा का पालन किया मैंने और उसके साथ में। अब देखो भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि आपको युद्ध करना है। अर्जुन अगर युद्ध ना करता तो युद्ध नहीं होता, युद्ध ही रुक जाता, कोई ना कोई ऐसे उपाय हो जाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा देखो तुम्हें युद्ध करना है, और अर्जुन ने भी कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत, तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह क्या था? कि मैं अपनी इच्छा से युद्ध नहीं करना चाहता था और नष्ट हो गया, यानी कि मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारा दास हूँ और मुझे तुम्हारी आज्ञा का पालन करना है। फिर एक समय ऐसा आया युद्ध के अंदर कि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, भगवान श्री कृष्ण के भांजे जो कि अर्जुन के पुत्र थे, अर्जुन बहुत प्रेम करते थे अभिमन्यु से, लेकिन अर्जुन की मृत्यु, अभिमन्यु अभी बहुत छोटे थे, आयु उनकी बहुत छोटी थी, और जब किसी पिता, ये एक नेचुरल बात है कि पिता अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता है, अर्जुन को बहुत दुख हुआ था उस समय कि मेरे पुत्र उस समय, लेकिन कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण को ये नहीं किया, ये नहीं बोला कि केशव तुमने ऐसा होने क्यों दिया, मैं तो तुम्हारी बात का, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा था, तुमने मेरे बेटे को बचाया क्यों नहीं, तुम तो समस्त संसार के कंट्रोलर हो ना, तुम अगर चाहते तो अभिमन्यु की मृत्यु होने से रोक सकते थे, तुमको, तुमने ये नहीं सोचा कि मैं क्या उत्तर दूंगा सुभद्रा को, मेरे कारण युद्ध हो रहा है और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन अर्जुन ने भगवान के सामने ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रखा, भले यहाँ पर दिखता है कि उनकी हानि हुई, लेकिन अर्जुन ने भगवान की आज्ञा और भगवान की इच्छा समझकर उसको स्वीकार किया। उसी तरह से हमें क्या करना है, केवल और केवल भगवान की आज्ञा और भगवान की इच्छा को स्वीकार करना है, और जैसे भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, उन्हीं के अंतर्गत हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम खुद से प्रश्न करना चाहिए हमको कि हम अपने पावर, अपनी फैसिलिटीज को यूज करके कितना कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं। जब महाराजा परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और गंगा के किनारे आकर बैठ गए। उन्होंने अब तक यही निर्णय लिया कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं और यहीं पर बैठूंगा, लेकिन मुझे करना क्या है वो खुद से डिसीजन नहीं लिया। वो कोई बेवकूफ नहीं थे, एक छत्र राजा थे, वो स्वयं से डिसीजन ले सकते थे। आज का प्राणी, यदि आज की किसी भी प्राणी को इस तरह का कोई पता चले कि मेरी मृत्यु आनी, तो सबसे पहले कहाँ भागेगा, है ना, किसी भक्त के पास भागेगा, किसी गुरु के पास भागेगा, किसी संत का आदेश लेने के लिए जाएगा, नहीं, वो डायरेक्ट से जाएगा मेडिसिन और मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु ही हमें बता सकता है कि हम किस प्रकार से अपनी मृत्यु को सफल बना सकते हैं। मृत्यु तो सबकी होने ही वाली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना इलाज नहीं करवाए, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं है जो आपकी मृत्यु होने से बचा सकता है, परंतु एक प्रमाणिक गुरु के आदेश से ही हम अपनी मृत्यु को सफल कर सकते हैं। तो महाराजा परीक्षित भी अनशन व्रत लेकर गंगा के किनारे पर बैठे और वहां पर बहुत सारे ऋषियों ने उन्हें अलग अलग सुझाव दिए कि आपको इन 7 दिनों के अंदर वेद पढ़ने चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए या दान देना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, और अंत में यह निश्चय तय हुआ कि सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत महापुराण यानी भगवान के विषय में श्रवण करना ही आपके जीवन को और आपकी मृत्यु को सार्थक कर सकता है। तो यहाँ से यह पता चलता है कि केवल भगवान के विषय में श्रवण करने से ही वास्तव में अंत समय में भगवान को स्मरण करना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च माम एव, 8.5 में भगवान ने कहा एव, एव का क्या मतलब होता है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, केवल कृष्ण, अंतकाले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, के जो अंत समय में मेरे विषय में सोचते हुए अपने इस शरीर को त्याग करता है, यह प्रयाति समत भावम याति नास्तत्र संशय, वो उसी समय मुझे प्राप्त करता है, मेरे भाव को प्राप्त करता है, नास्त्यत्र संशय, इसके अंदर कोई भी संशय नहीं है। भगवान ने तो कह दिया कि अंत समय में आप यदि मुझे याद करोगे तो फिर आप मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर है ना सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे कि हमें भगवान अंत समय में याद आएंगे। वास्तव में भक्तों अंत समय, ये तो परीक्षित महाराज को पता चल गया था कि 7 दिन के बाद है, लेकिन आज अगर हम अपनी ओर को थोड़ा सा भी देखें तो हमारे अंत समय की कोई फिक्स टाइमिंग हमें पता नहीं है, यानी कि वो कोई भी समय हो सकता है, अभी 1 मिनट में हो सकता है या फिर अगले सेकंड में हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कोई भी दिन। उसके पास तो एटलीस्ट 7 डेज थे, हमारे पास तो वो भी नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो फिर उसके लिए क्या करना है, उपाय बताया उन्होंने कि आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना है, केवल केवल कृष्ण के विषय में। और किससे श्रवण करना है, पहले ही हमने ये पढ़ लिया कि श्रवण करने के लिए भी आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण ही का सहारा लेना पड़ेगा, और किसी शास्त्र से नहीं और किसी तरीके से भी नहीं। और भी तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें भगवान के विषय में लिखा होगा, और या फिर कोई व्यक्ति है जो भगवान के विषय में जानते होंगे, लेकिन केवल इस श्रीमद् भागवतम महापुराण के विषय में कहा गया है कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने जो कि परंपरा से आए हुए थे। अभी देखो बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए थे, किसी को भी पकड़ा नहीं दिया, किसी को भी नहीं बोला कि भाई आ जाओ आप इसको सुनाओ भगवान के विषय में। क्या उन सबको भगवान के विषय में पता नहीं होगा? पता होगा, परंतु फिर भी एक ऑथेंटिक आचार्य जो कि परंपरा से आए हुए हैं, वही जो आपको इसी श्री प्रभुपाद ने बताया कि जब तक हम परंपरा से आए हुए किसी प्रतिनिधि से प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो जो परंपरा से आया हुआ भक्त होता है वो एज्ड है आपको बताते। तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे मुझ में और मेरे अनुयायियों में हो सकता है कि कोई खामियां हो, कोई त्रुटियां हो, परंतु जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो एज इट इज दे रहे हैं, वो परंपरा से आया हुआ है, उसमें कोई भी गलती नहीं, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। और कृष्ण की कृपा से हम उसी परंपरा से हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण से स्टार्ट हुई है, और नारद और फिर वेदव्यास जी से होती हुई शिला प्रभुपाद तक पहुंची। तो आज भी यदि कोई शिला प्रभुपाद जी के वचनों को एज इट इज हमें समझाता है, एज इट इज पढ़ रहा है, एज इट इज बता रहा है, और एज इट इज हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, शास्त्र के शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी से कल्याण होगा। हमें यह शास्त्र अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं पढ़ना है कि मुझे इसमें आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि यही मेरे जीवन को सफल बनाएगा। श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर एक बात बताई है कि जो मायावादी दर्शन के उपदेशक श्रीपाद शंकराचार्य हैं, जिन्होंने वेद में निराकार का प्रचार किया, वेदों के जरिए से पर निराकार ब्रह्म का प्रचार किया, उन्होंने भी बाद में इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने जो बताई है अलंकारमय व्याकरण जो वेदों का बताया है वो सब मृत्यु के समय काम नहीं आएगा, मृत्यु के समय उससे कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के समय केवल भगवान के पवित्र नाम और भगवान के अंदर स्मरण, भगवान कहते मेरा ही स्मरण अगर आप करोगे तो ही आपका कल्याण होगा। तो भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान के विषय में सोचने के लिए आवश्यक है कि हम इसकी प्रैक्टिस करें। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, सदैव नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत महापुराण कि हमेशा करते 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 स्मरण उसी बात का होता है जो कि हम कंटिन्यूअस करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से किसी का स्मरण, कभी कभी हम बोलते ना इसको, इस फ्रेंड को तो हमने इतने टाइम से याद नहीं किया, मैं तो भूल ही गई इसको, लेकिन जिसको रोज रोज याद करते हैं, जिसके बारे में रोज रोज बात करते हैं तो वो कंटिन्यूस हमारे मन में होता है। उसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि अंत समय में हमारा भगवान हमें याद आए तो हमें उसके लिए कंटिन्यूस क्या करना है, कंटिन्यूस श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना है। अगर नहीं करेंगे तो अंत समय में भगवान याद नहीं आएंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं 8.6 में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भावा। तुम जिस जिसको याद करोगे ना, फिर वैसा ही भाव तुम्हें प्राप्त होगा। अगर तुमने पूरी जिंदगी भगवान के अतिरिक्त किसी और को याद किया होगा, भागवत के अतिरिक्त कोई और आप भागवतम का श्रवण नहीं करते हो, तो फिर उस समय भगवान आपको याद नहीं आएंगे। इसीलिए शास्त्र कहता है आपकी जिंदगी के समस्त अपद्रव, आपकी जिंदगी के समस्त कष्ट, जितना भी आपकी जिंदगी का दुख है, प्रॉब्लम्स है, क्लेश है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम महापुराण साक्षात भगवान है, और जब किसी के जीवन में भगवान आ जाते हैं तो समस्त कष्ट, समस्त अपराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का ना देखना है, इस बात को हमें जरूर जांचना है कि हम भागवतम को पढ़ रहे हैं तो क्या वो एज शब्द है, वही शब्द जो सुखदेव गोस्वामी ने बताए हैं, वही शब्द जो श्रील प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बता रहे हैं, क्या हम उसको उसी तरह से श्रवण कर रहे हैं या फिर प्रतिकूल ढंग से। प्रतिकूल का मतलब क्या है कि जब दिल करा, जैसे दिल करा उसको है ना तोड़ मरोड़ के कोई बता दे कि भाई हाँ मजा करा है, एक कहानी बता दी श्रीमद भागवतम महापुराण की, और फिर कोई कमिटमेंट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम उदय करने का या प्रेम बढ़ाने के लिए कोई अना प्रयास नहीं है, तो फिर ये केवल मनोरंजन है। हमें सीरियस होना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी भक्ति में उन्नति करें, किस तरह से भगवान के विषय में श्रवण करते करते भगवान से प्रेम को अपने हृदय के अंदर जो सुप्त प्रेम है उसको जगाएं। तो उसके लिए प्रयत्न करने के लिए हमें एक सच्चे साधक, जो कि एक सच्चा प्रमाणिक गुरु है, उसकी सहायता की आवश्यकता है। तो फिर उसी लिए आज के श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसे ही प्रमाणिक गुरु के साथ भेंट हुई है आज महाराजा परीक्षक की, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण महाराजा परीक्षक को सुनाया, जिससे उनकी मृत्यु जो है वो सार्थक हो गई, और मृत्यु से पहले ही उन्हें कृष्ण प्राप्ति हो गई। तो हम सब हृदय से प्रार्थना करेंगे कि हम ऐसे सतगुरु का साथ प्राप्त करें, संग प्राप्त करें, और ऐसे शुद्ध भक्तों से हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।